نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا قال الله تعالى في المقام الآخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الرسول يا ربي إنا قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قال الله تعالى في المقام الآخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا قال الله تبارك تعالى في المقام الآخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا شعور دیا باشعور مسلمان بنایا اور اللہ کی اس کتاب سے محبت کرنے والوں میں ہمارا شمار کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمارا قیامت کے دن بھی نام مسلمان ہو کر ان لوگوں میں شامل ہو کہ جو اس کتاب سے محبت کرتے تھے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کے چار مختلف مقامات کی تھوڑی تھوڑی یعنی کہہ لیجئے کہ پوری آیتیں تو نہیں پڑھی لیکن اس کا ایک ایک حصہ پڑھا۔ پہلا مقام جو تھا وہ سورۃ فرقان کی پہلی آیت تھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بابرکت ہونے کا تذکرہ ہے کہ جس میں تبارک الذی نزل الفرقان، بڑی بابرکت ہے وہ ہستی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ فرقان نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ سارے جہان والوں کو آگاہ کرنے والے بن جائیں۔ سورۃ فرقان پوری کی پوری جہاد بالقرآن اور قرآن پاک کے حقوق کے متعلق ہے، اسی لیے شاید پہلی آیت میں بغیر کسی تمہید کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اپنی طرف سے نازل کردہ بندہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے علاوہ تیسری بات یہ ہے کہ مقصد کیا ہے؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ شاید آپ میں سے کسی نے ان میں سے ایک بھی جملہ نہ سن پائے ہوں، لیکن یہ اللہ کے کلام کا ایک خوبصورت رنگ ہے۔ صرف ایک لائن، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، یعنی میں آپ دن میں لاکھوں جملے بولتے ہوں گے اور اس میں سے ہزاروں بیکار بولتے ہیں، چند سو کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے وہ بھی اگر ہم بامقصد بولتے ہیں، لیکن اللہ نے اس ایک کلام میں قرآن کے اپنی طرف سے نازل ہونے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا جانا، اور تیسری بات ہے کہ نازل کیوں کیا گیا؟ تاکہ دنیا والوں کو آگاہ کیا جائے۔ اس آیت سے میں نے آپ کے لیے جو پوائنٹ اخذ کیا وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں اس قرآن کو، اس کلام کو جو محمدنس لا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا قرآن ثابت کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم اپنے دلوں سے نکال دیں، کیونکہ جب ہم قرآن کو نبی کی طرف منسوب کرتے ہیں تو پھر تو بات ہی بدل گئی۔ جب ہمارا نبی کوئی قرآن دے سکتا ہے تو کسی اور کا نبی بھی دے سکتا ہے، اور اگر ایک نبی دے سکتا ہے تو پھر بعد میں کوئی ولی بھی دے سکتا ہے، پیغمبر بھی دے سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے راستے کاٹ دیے کہ تبارک الذی نزل الفرقان، جس نے پیدا کیا اسی کے پاس اس چیز کا حق موجود ہے کہ وہ انسانوں کو جینے کا طریقہ سکھائے۔ تو پہلی بات آج کی ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور مالک کو پوری اجازت ہے کہ وہ اس میں کیا کرنے کا حکم دے اور کس سے روکے۔ آپ دنیا کے بڑے ہی ڈس آرگنائز ملک میں چلے جائیں، چھوٹے سے چھوٹے ملک میں بھی چلے جائیں، وہاں بھی یہ قانون ہوتا ہے۔ لوگ مانے نہ مانے، لیکن حکومتوں کی خواہش اور کوشش ضرور ہوتی ہے کہ لوگ لا کو مانیں۔ اب اس ملک میں جو بھی لا دیا گیا وہ حکومت اور کیبنیٹ اور جو بھی ان کے کارندے ہیں ان کی سب کی باہمی مشاورت سے بنتا ہے، پھر اس کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ آپ اور میں دن رات مجبور ہیں کہ ٹریفک کے لاس کو فالو کریں، ریڈ لائٹ پہ رکیں، گرین پہ چلیں، سپیڈ لیمٹ اگر کوئی ہے تو اس کو ہم مانیں۔ اب اس سارے کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کا میرا کام یہ تو نہیں ہے کہ ہم لاس بنانے بیٹھ جائیں، بس ہمارا کام ماننا ہے۔ तो बस इस बात को मुख्तसर समझ लीजिए कि आपका मेरा काम मनवाना नहीं मानना है। अल्लाह ताला ने जो हम सब के लिए चाहा वो दे दिया, अब फाइनल है। दुनिया के कवानीन के अंदर थोड़े सालों के बाद अमेंडमेंट्स होती हैं, तरमीमात कहते हैं। आज पाकिस्तान के लॉ के साथ भी जब भी कोई रूल दिया जाता है तो साथ बताया जाता है कि ये अमेंडमेंट 1973 की है, 4 की है, वट एवर। लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला ने जो इंसानियत के नाम पैगाम देने थे वो दे चुका, और कुरान पाक इसका फाइनल वर्जन है, लास्ट एंड लेटेस्ट, जिसको लोग कहते हैं ना लास्ट बट नॉट लीस्ट, नहीं, लास्ट एंड लीस्ट एंड फाइनल। पिछली किताबें वक्ती तकाज़ों के साथ बदलती रहीं लेकिन कुरान नहीं बदलेगा। इसलिए मुझे आपको अपने लिए इसी के ऊपर रहना है। ये ऐसे ही है कि जैसे जो बच्चे आपको मिलने थे मिल चुके हैं, अब आपको शायद और ना मिलें, आप इन्हीं की अच्छी तरबियत करें, अगर ये अच्छे नहीं हैं तो इनको अच्छा बनने की दुआ करें। हमारी जहाँ शादियाँ होनी थी हो चुकी अल्हम्दुलिल्लाह, अब इन्हीं के साथ रहना है। ऐसे ही है ना, यानी जो इंसान एक्सेप्ट नहीं करता किसी चीज़ को वो सारी ज़िंदगी रोता है। जिस वक्त आप और मैं अपने हालात को कबूल कर लेते हैं उसके बाद अल्लाह की रहमत आनी शुरू हो जाती है, तो पहली बात है कि दिल से सारी रिजेंटमेंट निकाल दें। रिजेंटमेंट क्या है? गुस्सा, ग्रज, ये क्यों है, वो क्यों है, औरत पे क्यों नहीं, मर्द पे क्यों नहीं, औरत को इतना हक, मर्द को इतना, मर्द 4 शादियाँ कर सकते हैं, औरत नहीं कर, भाई जो भी है ना अल्लाह ने कह दिया, मानना कि नहीं मानना। आप किसी को अपने घर में मुलाजमत के लिए लाएं और आप उसको बताएं ये करना है वो करना है, तो वहाँ वो बहस शुरू हो जाए कि भाजी ये क्यों करना है, इसकी क्या हिकमत है, आप क्यों कहती हैं भिंडियाँ पकें, मुझे तो फिश चाहिए और मुझे तो ये पसंद है, तो आपको गुस्सा आएगा। आप कहते हैं देखिए आप काम करने आए हैं, आपको हमने अपनी मर्ज़ी से काम देना है ना कि आपकी मर्ज़ी से। तो सबसे पहले याद रखिए कि मुझे आपको अपनी हस्ती पहचाननी पड़ेगी। इंसान से कुरान के 3 मुतालबे हैं, मैंने बीसियों बार इस पर बात की है लेकिन शायद आप में से किसी ने ना अभी तक सुनी हो। अल्लाह के हमसे सिर्फ 3 मुतालबे हैं, पूरा कुरान 6600 प्लस आयात से भरा हुआ आपको मुझको 3 बातों का हुक्म देता है। सबसे पहला हुक्म, अपनी हस्ती को पहचानो, इय्याका नाबुदु, तुम हो कौन। ये जो बात कर रही है ना, ये कुरान पे इतराजात, ये हलाल ये हराम, ऐसा ना हो वैसा हो, ये सिर्फ उसको सूझते हैं जिसको अपनी हस्ती का यकीन नहीं होता। वही बात है, घर के मुलाजम की क्या ज़रूरत कि वो बात के आगे बोले, वो तो कहते हैं बाजी जो कहेंगे कर दूंगा, जो बाजी कहती है मैं वो करूंगी। जब हम आगे से बहुत ज़्यादा मशवरे देते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे जहन में उल्टी सीधी बातें आती हैं ना, तो उसका मतलब क्या होता है कि हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। और अफसोस की बात है कि आज के दौर में निज़ाम तालीम के कुछ ऐसे लूप होल्स कह लीजिए या पीछे से क्या सोच है कि जो जितना दुनिया का पढ़ता जाता है उतना अल्लाह के कलाम पर तनकीद और इसके ऊपर एतराज़ आता है। पहले ये एतराज़ बंद कमरों में होते थे, फोरम्स में बैठकर चंद उलमा बैठते थे और उस पर बात, इस पर। आज खूबसूरत स्क्रीनों पे मीडिया के थ्रू, पहले प्रिंट मीडिया से बहुत कुछ लिखा जाता था लेकिन लोगों में अब ओवरऑल अब पढ़ने का रिवाज कम हो रहा है। आज के दौर का बहुत बड़ा इशू क्या है कि आज सोशल मीडिया पे आके लोग बात करते हैं, और वो बातें जो बहुत कम लोग सुनते थे आज बच्चा बच्चा सुनता है कि रात को तो ये बात कह गए, फलां कह गया, और वो जो मर्जी इस्लाम की हालत बिगाड़ के तोड़ मोड़ के पेश करें, फिर कहते हैं जी ये तो हमने खुद पढ़ा, ये तो सुना है हमने। तो याद रखिएगा, जब बंदे को अपना मुकाम समझ आ जाता है ना कि मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी हस्ती बहुत कमज़ोर है, मेरे रब ने मुझे जो करने का हुक्म दिया मैंने करना है, तो ये पहला मुतालबा है। बिल्कुल इसको समझ के इंसान दुनिया में जिए, ज़िंदगी गुजारने का रुख बदल जाता है। छोटी सी एक मिसाल मैं अक्सर देती हूँ, आपके लिए भी रख देती हूँ, कि आपके घर में किसी को आपने बुलाया कि मुझे काम के लिए मदद चाहिए। अब जब आपके सामने वो मेड आ गई तो आते ही आप उसको कहते हैं कि आप खाना बना लीजिएगा, किचन भी साफ़ कर दें, और आज ज़रा आप थोड़े बाथरूम भी अच्छे साफ कर दें। आप जितना काम बताती जाएंगी वो खुश होगी कि बाजी ने मुझे रख लिया, तभी तो काम पे रखा है ना। ऐसे ही है ना, जब हम किसी को काम पे रखते हैं तो हम उसको काम देते हैं, वो खुशी खुशी काम करेगी, सारा दिन दिल लगाकर वो काम भी करती रहेगी, शाम को आप आएंगे चले कुछ कमी बेशी तो होगी लेकिन उसने अपनी सी कोशिश तो की होगी, और वो खुश है कि बाजी ने मुझे इस काम पर रख लिया। इसके बरक्स अगर आपके पास बेल हो और आपकी बेस्ट फ्रेंड आए, और बेस्ट फ्रेंड भी वो कि जिसका माशरे में एक नाम है, जिसके शौहर माशाल्लाह एक आला पोस्ट पे मौजूद हैं, और जिसने शायद अपने घर में चाय की प्याली भी ना बना के पी हो, आप उसको आते ही देखकर वो सारी इंस्ट्रक्शंस दें जो अभी थोड़ी देर पहले आप एक मेड को दे चुकी, सच बताइए कि आपकी वो दोस्त ये इंस्ट्रक्शन सुन के खुश होगी? बातें तो आपकी सेम है लेकिन पहली खुश हुई दूसरी खुश नहीं हो रही, वजह क्या है? ये अपने आप को कुछ समझती होगी कि वॉट, मैं तुम्हारे बर्तन धोने आई हूँ, मैं तुम्हारी मासी हूँ। बस ये सोच रख लीजिए, आज से अपनी ज़िंदगी में एक असूल बनाएं, जब अल्लाह का कोई हुक्म मेरे कानों तक पहुँचे, वो सूरत मुल्क का हुक्म है, सूरत नास है, सूरत नूर है, सूरत अल अहज़ाब है, वो सूरत अल अराफ है, वो सूद का मसला है, वो लिबास का मसला है, वो सेग्रीगेशन का मसला है, वो दीन के छोटे से लेके बड़े दर्जे का हुक्म है, मैंने एक बात कहनी है कि मेरी हस्ती मानने वालों की है, मनवाने वालों की नहीं। एतराज़ात अल्लाह को अच्छे नहीं लगते। जिसने इस बात को समझ लिया, आप देखेंगे दिल ने मान लिया ना आज कि या का नाबुद। और इसीलिए दिन में 17 बार ये मैसेज दिलवाया जाता है कि मुंह से बोलो कि या का नाबुद। अपने आप को हम बड़ा समझना छोड़ दें। हर दौर के नबी ने जब भी दीन का पैगाम दिया तो उनकी सामने जिसको आप कहते हैं कि मुंह मारी करने वाले, कट हुज्जतियाँ पेश करने वाले कौन थे? वक़ाल मलउल्लज़ीन कफरू, उन 9वें पारे की पहली आयत है और हर नबी के नाम के साथ आता है कि जब भी उन्होंने अल्लाह का पैगाम दिया, वो लोग जो मुआशरे में बड़े बनते थे, इन लीड्स, ट्रेंड सेटर्स, ब्रांड्स शो करता है, ब्रांड्स मेरा कपड़ों के ब्रांड ना लीजिए, सोचे भी ब्रांडेड होती हैं, लाइफस्टाइल, ज़िंदगी चंद लोगों के हाथों में है। आज आप देखिए कि अल्लाह के मुकाबले में शिर्क वो नहीं हो रहा जो पहले दौर में होता था कि पत्थरों को पूछते थे खुदा के मुकाबले में। आज सोचों का शिर्क है, आज अफकार का शिर्क है, अल्लाह के दिए हुए इकोनॉमिक सिस्टम के मुकाबले में बैंकिंग सिस्टम का शिर्क है। आज गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के बदले में ये कागज़ के नोटों का शिर्क है कि जिसकी वजह से आप चाहें तो एक कागज़ पे मोहर लगा लें तो वो 1 रुपये की है और दूसरे पे लगाएं तो वो 101 की है या 110 की है। आप उसको डॉलर कह दें तो वो 110 भी इसका है, आप उसको पाउंड कह दें तो 150 का, और आप उसको क्रोन कह दें तो वो 10-12 का है। ये इंसानों का काम नहीं था। आज भी इंसानियत इस बात की गवाह है कि इस दुनिया में, इस ज़मीन पे जब तक सोना और चांदी रहा एज अ करेंसी, पूरी दुनिया में ये कॉलोनी सिस्टम नहीं था। ये थर्ड वर्ल्ड, ये फोर्थ वर्ल्ड, ये सुपर पावर्स, ये इनकी मोनोपोलीज, ये इन चंद लोगों के हाथ में, ये सारा कुछ हमारे सोचों से भी आगे है, जितना हम सोच सकते हैं वो बड़ी बात है। जब अल्लाह के दिए हुए निज़ाम पे ज़िंदगियाँ चलती हैं, अल्लाह की तरफ से रहमत भी होती है, खैर भी होती है, तो हम सब का पहला फ़र्ज ये बनता है कि हम अपने रब के बंदे बने। और दिन में सुबह उठते ही अपने आप को इमेजिनेशन में लाएं, बहुत मुअद्दब और बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड अच्छा मुलाजिम कौन होता है? आते ही आपको सल्यूट करता है, ड्राइवर देख लीजिए, साहब मैं आ गया, हुक्म कीजिए, बंदा हाजिर है, किधर जाना है? सर आज क्या काम है? सर भी खुश हो जाते हैं, उन्होंने पहले ही लिस्ट बनाई होती है, अच्छा उधर चले जाना, उधर चले जाना, फिर बच्चों को लाना, फिर इसको लाना, फिर उसको देना, अल्हम्दुलिल्लाह काम चलता रहता है। आप अल्लाह को सुबह उठ के कहें कि अल्लाह बंदी हाजिर है, हुक्म कर, मैं तेरी ग़ुलाम हूँ, तूने मुझे जो कहा मैं करने को तैयार हूँ। और इसके बाद आप देखेंगे कि जब आपने मैंने अपने इस मुकाम को पहचान लिया, 1/3 ऑफ रिलीजन हैव बीन कम्प्लीटेड, हमारा 1/3 दीन पूरा हो गया अल्लाह की रहमत से, बात ही ख़त्म हो गई। और आप इसको समझना चाहते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। देखिए बीवी के अंदर आजजी होगी ना तो वो शौहर के मुतालबों पे खुश होगी, है ना, तभी कह रहा चाय बना के लाओ, है ना, तभी तो कह रहा मेरे दोस्त आ रहे हैं उनके लिए खाना बनाओ। तो जिस बीवी ने दिल से शौहर को शौहर माना ही नहीं, या समझ लीजिए कि अपने आप को बड़ी ऊंची चीज़ समझा, तो उसको तो उसका जायज़ मुतालबा भी बुरा लगेगा। यही असूल दुनिया में हर जगह चलता है। तो आज दिल के अंदर इस चीज़ को बिठा कर मैंने आपने जाना है, क़ुरान वाली ज़िंदगी, क़ुरान के साथ अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो उसका पहला मुतालबा ये है कि हमने अपने आप को छोटा करना है। दिन में हम कम अज़ कम 17 बार कहते हैं या कना बुदू व या कनस्ताई, और अगर आप अजान, इकामत और नमाज में अल्लाह अकबर गिनें और हर फ़र्ज़ के बाद 33 बार अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, बल्कि 34 बार की बात भी है, 5 नमाज़ों को ज़रब दीजिए 34 से, ठीक है, हर नमाज के बाद अजान का, इकामत का और नमाज के अंदर कम अज़ कम 200 बार हम एक दिन में कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, और हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह अकबर नहीं होता, मुआशरा अकबर, बिरादरी अकबर, ख़ानदान अकबर, रस्म व रिवाज अकबर, फैशन अकबर, दौलत अकबर, लाइफस्टाइल, वो जो लोग चाहते हैं, ہماری زندگی بعض دفعہ دوسروں کو بڑا سمجھتے سمجھاتے گزر جاتی ہے. زبان سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے, لیکن ہمارا عمل اس کی گواہی نہیں دیتا. میں نے غلط کہا ہو تو آپ کو پورا حق ہے کہ یہاں سے بھی اٹھ کے چلے جائیں. بڑا کون ہوتا ہے؟ جس کی بات مانی جائے, جس کی عزت کی جائے. زبانی کلامی نہیں, جس کی بات کو واقعی دل کی تختی پہ لکھ لیا جائے. ہم اپنے لائف سٹائل کو اگر دیکھیں, اور مجھے یقین کریں ہمیشہ پاکستان آ کر اس بات کو کہتے ہوئے زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ 99% آبادی اس ملک کی مسلمز کی ہے. ہم باہر بات کرتے ہیں نا تو ہم پہلے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے دامن میں جھانکتے ہیں ہم ادھر ہیں کتنے, ہماری یہ بات اس معاشرے کے مطابق صحیح بھی لگے گی کہ نہیں. لیکن جتنی جرت کے ساتھ میں پاکستان میں آ کے بات کرتی ہوں, میں نے دنیا میں ایسے کبھی نہیں سیکھی. اور آپ کو شاید اس نعمت کی قدر نہ ہو, مجھے اس کی بڑی قدر ہے کیونکہ سال میں ایک آدھ دفعہ ہی مجھے موقع ملتا ہے. ایک آزاد ملک کی فضاؤں میں سانس لینے والے مسلمان, میں ڈرانا نہیں چاہتی آپ کو, میں اللہ نہ کرے ایسا ہو جو میں کہنے لگی ہوں, کل آپ کے اس ملک میں وہ سینکشنز لگ جائیں, وہ پابندیاں لگ جائیں, وہ بین لگ جائیں جو اس وقت آدھے سے زیادہ یورپ میں لگ چکے ہیں, آپ برداشت کریں گے یہ بات؟ آپ کی مسجدوں کی اذانیں بند کر دی جائیں آپ پسند کریں گے؟ وہ ملک ہی کیا آپ کو لگے گا کہ جدھر اذان ہی, ابھی تو آپ کو اچھا نہیں لگتا ہوگا کہ اتنی بولتے ہیں. یہ بھی ٹھیک بات ہے, ہونی سب کی ایک ہی وقت میں اذان چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دنیا کے کتنے خطے ہیں کہ وہاں مسلمان اذان نہیں دے سکتے کیونکہ باقی لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ قانوناً بائی لاء آپ کے اس ملک میں حجاب اور نقاب بین کر دیا جائے؟ چاہتے ہیں آپ؟ میں کہتی ہوں نشے میں مدہوش مسلمان بھی ہوگا نا, اللہ نہ کرے, وہ بھی نہیں کہے گا. لیکن آج آدھی سے زیادہ مسلم ورلڈ جن ملکوں میں رہتی ہے وہاں یہ پابندیاں ہیں کہ نہیں ہیں, وہ کس لیول کی ہیں. اور ہم جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے تو وہ ایک ڈھگوسلہ ہے کہ نہ 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 بڑی پابندی ہے. یہ بھی جھوٹ ہے, یہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن آوازیں اٹھیں, کب اٹھتی ہیں آوازیں؟ یاد رکھیے کہ پانی ہمیشہ نیچے کی طرف جاتا ہے, جو چیز جھکی ہوتی ہے نا ادھر جھکتا ہے. جب مسلمان اپنے اصول قواعد اور ضابطوں میں کمزور ہو جاتے ہیں نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر دوسروں کو ان کے اوپر مسلط کرتے ہیں. دیکھیے جب ذہنی طور پہ ہم کسی کے غلام ہو گئے ہے نا, تو پھر اللہ ان کو حقیقی طور پہ بھی ہمارا آقا بنا دے گا نا. سیدھی سی بات ہے. دو باتیں میں نے سنی ہیں شروع سے, کہتے ہیں کہ جن کا بچہ, یعنی جن کہہ لیجئے, اور انسان کا بچہ. اس سے آپ جتنا ڈریں گے نا یہ آپ کو اتنا ڈرائے گا. از اٹ ٹرو؟ جتنا ڈریں گے اتنا ڈرائیں گے. آپ بچے کا ایک لاڈ دیکھیں وہ اگلا لاڈ شروع کر دے گا, تیسرا کرے چوتھی فرمائش شروع ہو جائے گی. انسان کے لیے اللہ نے جو چیز رکھی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کلمے کے اندر اتنی جرت اور اتنی پاکیزگی ہونی چاہیے کہ سب سمجھ لیں کہ یہ ہم سے نہیں اللہ سے ڈرتے ہیں, ان کی انسٹرکشنز وہاں سے آتی ہے. اور جب مسلمان اپنے کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے نا, تو دوسرا اس کو جرت بھی نہیں دیتا. دیکھیں نا, ایک شخص ہے وہ امپلائیڈ ہے, کہیں جاب ملی ہوئی ہے, کیا اس شخص کو دوسرا کوئی جاب آفر کرے گا؟ جاب کس کو آفر ہوتی ہے؟ جو جاب لیس ہو. ایسی ہے نا, جو پہلے سے کسی کام پہ لگا اس کو کون بلاتا ہے؟ رشتے کن کے آتے ہیں؟ جو ان میرڈ لڑکیاں ہوتی ہیں. میرڈ عورت کو کبھی رشتہ آیا؟ عام حالات میں نہیں آتا. بس ان دو تین مثالوں سے سمجھ لیجئے, جب مسلمان اللہ کے امپلائیڈ ہوتے ہیں, جب وہ اللہ کے آگے بکے ہوتے ہیں. ان اللہ اشترا من المومنین, اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال. جب مسلمان ایک اللہ کے ہاتھوں بکا ہوتا ہے, واللہی واللہی کوئی دنیا کی طاقت ایسی ہے ہی نہیں کہ جو اس کو خریدنے کی کوشش کرے. غیروں نے مسلمانوں کو اسی دور میں خریدا جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کیا, اور یہ ایک دن میں نہیں ہوتا. اس کے لیے یا کنا بدو کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کے میرے لیے یہ چیز لمحہ فکریہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کو میری بات بہت آگے کی لگے, یہ کیا بات ہے, اب ہم کیا کریں. یاد رکھیے کہ قطرہ قطرہ کر کے بگاڑ بھی آتا ہے اور اصلاح بھی ہوتی ہے. آج اگر عمومی طور پہ امت مسلمہ کو دیکھا جائے تو وہ اپنے دل سے خود کو اللہ کا بندہ سمجھتی ہی کم ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہے نا, اب دنیا بھی رکھنی پڑتی ہے, رشتہ داروں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اور آج کا دور وہ دور آ گیا واللہ ہی, हम नहीं अगर डरते किसी से या कम डरते हैं तो उससे जिससे सबसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। हम सबसे कम उसको खुश करने की कोशिशें करते हैं जिसको सबसे ज़्यादा खुश करने की ज़रूरत है। नाम को हम माशाल्लाह नमाजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इन्हीं ने ये नाम की नमाजें हमारे ज़ाहरी जो ये रिचुअल्स हैं जिसको पिलर्स ऑफ इस्लाम कह दें उसी की वजह से आज अल्लाह ने अभी तक हमें नहीं पकड़ा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दुनिया में मुसलमानों में नमाज़ पढ़ने वाले थोड़े नहीं हैं। ये अलग बात है कि ओवरऑल देखा जाए तो सारी उम्मत में से 10-15% नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह को 10% की भी बड़ी कदर है। आज भी अच्छे लोग बहुत हैं, और अल्लाह की नज़र में तो एक अच्छे बंदे की इतनी कदर है कि अल्लाह उनके लिए सारे लोगों को पीछे कर दे। लेकिन ओवरऑल जिस तेज़ी से उम्मत मुस्लिमा खुद को अल्लाह की बंदगी के दायरों से बाहर निकालती जा रही है, आज नहीं साल 2 साल 4 5 10 15 20 साल क्या होगा इसके बाद? देखिए बहुत आसान जवाब है इसका। आज क्या है? 12 जनवरी 2018, 2018, और जनवरी 12th 2018 है ना, पीछे जाइए 10 साल। माशाल्लाह इतनी मेमोरी तो हम सबकी ठीक है। 2008 की जनवरी आपकी ज़िंदगी के, मेरी ज़िंदगी के पिछले 10 साल। सोचिए ज़रा क्या हम इन 10 सालों में कुछ बदले? हमारी तरजीहात बदली, हमारे लाइफस्टाइल बदले, हमारा बच्चों और औलाद का ताल्लुक बदला? मैं ये तो नहीं कह सकती कि ज़मीन आसमान की तब्दीली आई, लेकिन हम बहुत बदल गए। तब्दीली बहुत आई है, और ये आखिरी 10 सालों में तो इतनी आ गई। देखिए बुरी चीज़ तो हमेशा ही बुरी समझी जाती थी, लेकिन वो वक्त जब तक लिमिटेड चीज़ें थी हमारे घरों में, एक टीवी होता था, सारी फिल्म देखते थे, लेकिन ये लफ्ज़ बोला जाता था ये बड़ों के देखने वाली है, ये बच्चों के देखने वाली है, और अगर कभी कोई मूवी देख भी रहा है ना तो रिमोट कंट्रोल घर के बड़े भाई या बच्चे के हाथ में था। और ज़रा कोई ऐसी खिलाफे फितरत या खिलाफे शरा चीज़ देखनी तो जल्दी से उसको फॉरवर्ड कर देना। ये वक्त आपने भी देखा होगा, यानी फिल्में अगर इवन इंडियन मूवीज़ भी देखते थे तो उसको सेंसर कर करके देखते थे, देखते थे ना। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आज क्या आप अपने घर के 4 बच्चों और आपका शौहर और आप खुद हैं, 6 लोग हैं, इनके ऊपर ये चेक लगा सकते हैं कि क्या देखो और क्या ना देखो? ये आपके मेरे हाथ में आपका कैमरा, आपके मेरे हाथ में हमारा सिनेमा भी है, ये क्लब भी है, इससे आप कुरान सुन लीजिए, आप इससे हरम की तरावी सुन लें, और आप इससे दुनिया के न्यूड तरीन गंदे नेकेड क्लब के सीन जाके देख लें, यहाँ से ही आपको दिखाता है। आज गैजेट्स और जो दुनियावी तरक्की हुई उसने जो तहलका मचा दिया उससे आप देखिए। मुझे कल कोई बता रहा था कि शायद 2 दिन पहले कोई बात हो रही थी कि हमारे अपने मुल्क, इस मुल्क में जहाँ अभी तक बिजली पूरी नहीं आ रही, गैस पूरी नहीं आ रही, और जो भी बेसिक चीज़ें, हम कई चीज़ों पे भी पीछे हैं, सबसे ज़्यादा इस मुल्क से फेसबुक यूज़ की जाती है, डाटा सर्विंग और इंटरनेट का इस्तेमाल। और मैं इसकी गवाही दे सकती हूँ, मैंने दुनिया में जहाँ भी जाकर देखा है, थोड़ा बहुत ही देखा है, मैंने कभी दो दो और तीन तीन सिमों वाले फ़ोन किसी मुल्क में नहीं देखे सिवाय अपने मुल्क पाकिस्तान में। एक सिस्टर थी, कहने लगी मेरी मेड के पास 3 फ़ोन होते हैं, और मैं किसी के घर थी अभी इसी वीक में, मैं ज़ाहिर है ऑब्ज़र्व करती हूँ जब मैं इर्द गिर्द देखती हूँ, तो मासी काम कर रही थी और घर वाली उसको कुछ बोल रही थी ना कि ये करो, तो वो असर ही नहीं ले रही, पास जाके देखा तो कान लगाया, कहती इसको तो उतारो फिर ही तुम मेरी बात समझोगी। आपकी मासियों के हाथों में फ़ोन है, आपके बच्चों के हाथों में फ़ोन है, आपके ड्राइवरों के हाथों में फ़ोन है, ये बुरी बात नहीं थी, लेकिन क्या हम इतने अहम काम कर रहे हैं? आप इस रूम में इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि अल्लाह के कलाम की सिर्फ अभी एक बात आपको समझाऊँ, और आप अपने फ़ोन पे मैसेज चेक करें, और आप ज़रा टेक्सटिंग कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद देख लें क्या। मैं कह सकती हूँ कि आप मेरी बात का सिर्फ 10-20% सुन रही हैं, कान आपके सुन रहे हैं लेकिन आपका दिल नहीं सुन रहा। फितरी बात है, इंसान जहाँ होता है वहीं के तकाजे पूरे करता है। आज कितने घर टूट गए हमारे माशरे के सिर्फ इस वजह से कि बच्ची थी ससुराल में लेकिन फ़ोन और नेट के थ्रू वो उसका दिल दिमाग माँ के घर में था। ये कोई कही सुनी बातें नहीं, इतना ज़्यादा इसने हमारी सोशल लाइफ के ऊपर भी असर डाल दिया है कि मैं यहाँ बैठ के आपको वो बातें बता ही नहीं सकती। जो गंदगी फैल गई कि शौहर अपनी बीवियों के साथ होते हुए भी वो किसी और के साथ जिना कर रहे होते हैं सिर्फ इस गैजेट की वजह से, आप क्या कहते हैं? अब ये रोक तो सकते नहीं हम तब्दीलियाँ, ना हमने ये नेट बंद करने हैं ना फ़ोन छोड़ने हैं, लेकिन एक काम तो कर सकते हैं ना हम, और वो क्या है कि या का ना बुदू व या का नस्ताई। देखिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रवायात के मुताबिक 8 से 10 साल की उम्र के बीच में अपने माँ बाप से जुदा हो गए थे। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि मुस्लिम माँ बाप के हाथों से निकल कर एक गैर मुस्लिम माशरे में चले गए, जहाँ बेहयाई की हद ये थी कि मर्द नहीं वहाँ औरतें बुराई की दावत देने वालियाँ थीं। लेकिन सारी ज़िंदगी यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस चीज़ ने पाक किया? उस 7-8 साल की तरबियत ने। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने आप को इस चीज़ के साथ समझें। फर्स्ट थिंग, समझ आ गई, मैं तो अपने आप को दिन रात अगर ये बात समझाऊँ ना कि मेरी हस्ती क्या है, मेरा मुकाम क्या है, मैं कितने पानी में हूँ, तो यकीन कीजिए आधा गुस्सा मेरा इस्लाम के बारे में ख़त्म हो जाएगा, मानना पड़ेगा मुझे। चलिए दूसरी चीज़ पे चलते हैं। आप बन गए अल्लाह के बंदे। जब अल्लाह का बंदा बनता है ना, उसके बाद उसी में 5 नमाज़ें भी हैं, उसी में रोज़े हैं, क्योंकि अल्लाह ने जॉब लिस्ट दी है, अल्लाह ने डिस्क्रिप्शन दे दी, अल्लाह ने थिंग्स टू डू दे दिया। मैं अब चेंज नहीं कर सकता, मुझे मानना पड़ेगा। यानी मेरा अपना ज़ाती दीन जितना भी है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और जो बेसिक्स हैं, वो इसमें आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इबादत की पाबंद हो गई। इसके बाद दूसरा तकाजा,